Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, इटली अपने वास्तुशिल्प के लिए जाना जाता है, इंग्लैंड जाना जाता है अपने व्यापार के लिए, अमेरिका जाना जाता है अपने डॉलर के लिए, लेकिन जब कभी भारत की चर्चा होती है तो भारतवर्ष जाना जाता है अपने आध्यात्म के लिए, अपने दर्शन के लिए और साथ ही राजयोग मेडिटेशन के लिए। सारे संसार के लोग यहाँ आध्यात्म को सीखने और जानने के लिए आते रहे हैं। यदि आप इतिहास उठाकर देख लें तो चाहे वो चीन रहा हो, चाहे पूर्वोत्तर जो राज्य रहे हैं वो रहे हों, सभी लोग यहाँ आते रहे हैं और ज्ञान लेकर जाते रहे हैं। और भारत का प्राचीनतम राजयोग तो सचमुच बहुत मशहूर रहा है, जो सभी समस्याओं के निदान के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। विशेष करके मैं ये कहना चाहूँगा, आपने ऋषि मुनियों के अनेक आख्यान सुने होंगे। किसी को आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त थी, कैसे ये संभव था? अब आज यदि व्यक्ति सोचे तो शायद उसे लगेगा कि नहीं, शायद ये बात रही नहीं होगी, लेकिन ये बात सत्य है। कोई आकाश गमन करता था, कोई जल गमन किया करता था, किसी की आयु बहुत लंबी हुआ करती थी। और न केवल इतना ही, अनेक प्रकार की जो बीमारियां थीं उन सब का भी इलाज राजयोग के माध्यम से किया जाता रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है। अब पुनः हम वहीं आ पहुंचे हैं, कल भी हमारी चर्चा हो रही थी कि अब ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिनका कोई निदान प्राप्त नहीं होता है, मेडिकल साइंस के पास भी जिसका कोई इलाज न हो, तो ऐसे में क्या किया जाए? आध्यात्म के पास वो सारे जवाब हैं, इसीलिए राजयोग पे कल भी हम चर्चा कर रहे थे। आइए उसी चर्चा को आदरणीय भ्राता जी के साथ आगे बढ़ाते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के समाधान कार्यक्रम में उनका। प्रता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक यू।
प्रता जी, सभी चीज़ों की शुरुआत भारतवर्ष से हुई है, ज़्यादातर चीज़ों की, चाहे वो शल्य चिकित्सा भी रहा हो उसकी भी यहाँ शुरुआत हुई है। आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, राजयोग की भी विशेष व्याख्या की जाती है। तो क्या ऐसा लगता है कि अब पुनः उसी राजयोग का दौर आ गया है जो सभी को सीखना चाहिए और अपनी समस्याओं को दूर करना चाहिए?
परम आवश्यक है, क्योंकि मानसिक रोग ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जिनका सचमुच मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज है नहीं, क्योंकि मन एक अलौकिक चीज है, बुद्धि एक अलौकिक चीज है, नॉन फिजिकल चीज है। ये जो है ये है ब्रेन, और इस ब्रेन की भी नॉलेज मेडिकल साइंस के पास बहुत कम है। मैं तो मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, पर हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 250 बहुत प्रसिद्ध सर्जन्स ने हिस्सा लिया था, और सब एक मत से बोल रहे थे कि ब्रेन की केवल 10% नॉलेज संसार में मेडिकल साइंस के पास है। क्या क्या ब्रेन में है वो भी मनुष्य को समझ में नहीं आ सकता। और साथ में मन, बुद्धि, आत्मा जो अभौतिक चीज है, जो अलौकिक चीज है, उसके बारे में तो उन्हें कुछ पता ही नहीं। इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, पर उनका इलाज नहीं है, उनका इलाज अध्यात्म है। मानवता मरने को तैयार है। संसार में ऐसी भयानक स्थिति है, टोटल सारा संसार ही जैसे ऑक्सीजन पर चल रहा है, इसको स्पिरिचुअल ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है। बिना स्पिरिचुअलिटी के अब कोई सर्वाइव कर नहीं पाएगा। मैं एक छोटी सी और सूक्ष्म बात कहूंगा, जब आप दर्शन की बात कर रहे थे कि भारत का दर्शन फेमस रहा है, भारत तो वास्तव में जगत गुरु रहा है, सभी आत्माएं हैं, सबके मस्तक के मध्य में यानी ब्रेन के मध्य में आत्मा विराजमान है। आत्मा में कभी संपूर्ण लाइट थी, जब वो परफेक्ट थी, उसकी परफेक्शन खत्म होती गई और अब आकर रह गई बहुत कम लाइट, बहुत कम एनर्जी, बहुत कम अच्छे वाइब्रेशंस। अब ब्रेन के बीच में आत्मा बैठी है, वो ब्रेन को जा रहे हैं। अब वो इतनी लाइट जा ही नहीं रही कि ब्रेन को वो एनलाइटेंड करे, इतने प्योर वाइब्रेशंस जा ही नहीं रहे कि नेगेटिविटी को नष्ट करे, इतने पावरफुल वाइब्रेशंस जा ही नहीं रहे कि वो समस्याओं को समाप्त कर दे, बीमारियों को न होने दे। अगर हम आत्मा की लाइट को बढ़ाने लगे, अगर हम आत्मा की एनर्जी को बढ़ाने लगे, अगर हम आत्मा की प्योरिटी को बढ़ाने लगें, तो ये सब चीज़ें स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी। और उसका तरीका केवल अध्यात्म है, उसका तरीका केवल अपने को परमात्मा से जोड़ना है, जिसकी हम संतान हैं, उससे अपना नाता जोड़ लेने से हमारी स्पिरिचुअल पावर बहुत बढ़ेगी, जीवन को एनलाइटेंड करेगी, ब्रेन को एनर्जी देगी। जो निगेटिविटी हो गई, जो ब्रेन की बहुत बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उनमें वो बहुत अहम भूमिका निभाएगी। तो अध्यात्म की सचमुच बहुत जरूरत है।
दादाजी, कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो एक बात आई थी कि राजयोग का अभ्यास हमें लगातार 8 घंटे तक कम से कम करना चाहिए। तो एक विशेष बात आई थी कि क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं, योग करना भी चाहते हैं लेकिन मन एकाग्र नहीं हो पाता।
सूक्ष्मता से हम इस पे दृष्टि डालें
जी,
ऐसे लोग ज्यादा हैं जो 8 घंटे योग की रेस में आगे चलते हैं
जी।
कोई 2-4 दिन कर पाता है, फिर थक जाता है, क्योंकि योग अभ्यास करने में भी ब्रेन को बहुत एनर्जी यूज करनी पड़ती है। जैसे ब्रेन को संकल्प चलाने में एनर्जी यूज करनी पड़ रही है, वैसे ही संकल्पों को कंट्रोल करने में और ज्यादा शक्तियों की जरूरत पड़ रही है। फिर ऑलमाइटी से नाता जोड़ना है तो हमारी एनर्जी यूज अवश्य होती है। इसलिए कि जिनका ब्रेन एनर्जेटिक नहीं है वो 2-4 दिन में थक जाते हैं कि छोड़ो भाई, अपने से नहीं होगा ये काम, अपना 1-2 घंटा योग ही काफी है
जी।
ये एक सूक्ष्म फिलोसफी है इसके पीछे। और ये ब्रेन को एनर्जी जाती है प्योरिटी से, ये ब्रेन को एनर्जी जाती है पावरफुल थॉट्स से, ब्रेन एनर्जेटिक होता है स्वमान से। इन चीजों का जो व्यक्ति अभ्यास करेगा, इन चीजों को समय लेना चाहिए। केवल योग अभ्यास कर देना, खींचतान के एकाग्रता करना, वो योग अभ्यास करने वालों के लिए और घातक होती है। उससे ब्रेन पर कहीं ना कहीं स्ट्रेन पड़ता है, उस पर दबाव पड़ता है, जो ब्रेन की शक्तियों को नष्ट भी कर सकता है। इसलिए बहुत सहज भाव से लाइक एंजॉयमेंट हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। तीसरी चीज होती है कि मनुष्य अपने को अंतर्मुखी नहीं बना पाता, कर्मेंद्रियों के रस उसे खींचते रहते हैं। तो भाई, ये संसार के आकर्षण भी उसे अपनी ओर बहुत आकर्षित करते रहते हैं। वो सोचता रहे मैं तो ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, ये भी छूट गया। देखिए, कर्मेंद्रियों में अगर रस होगा, मान लो किसी को खान पान का ही रस है तो योग टूटेगा, किसी को व्यर्थ सुनने का कानों का रस है, निंदा रस, योग टूटेगा, किसी को संसार में और कुछ आकर्षण बहुत है तो योग टूटेगा। तो ये कुछ कारण बनते हैं। कोई अपने को एक बहुत अच्छी सेटिस्फैक्टरी प्योरिटी को नहीं अपना पाते हैं, उनको कहीं कुछ देखने की इच्छा होती है, वो अपनी इम्प्योरिटी को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं। ये सब कारण बनते हैं कि हर व्यक्ति ऐसा अच्छा योगी नहीं बन पाता। लेकिन जिसका चित्त बहुत शांत है, जो सरल चित्त हैं, जिन्होंने संसार की इच्छाओं को छोड़ दिया है, जिनके अंदर प्योरिटी के बहुत अच्छे और नेचुरल संस्कार हैं, जो ज्ञान योग की पढ़ाई में भी बहुत रुचि लेते हैं और जिन्होंने निष्काम भाव धारण कर लिया है, वो अच्छे और सफल योगी बन जाते हैं।
यदि शुरुआत मैं करना चाहूँ तो शायद आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी एक लंबी प्रोसेस है, तो शायद एक झटके में शायद मैं 8 घंटे तक योग नहीं कर पाऊँ। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जो शुरुआत कर रहे हैं, मान लीजिए 1 साल 2 साल हो गए या 5 साल भी हो गए या 10 साल भी हो गए, अब शुरू करना चाहते हैं कि 8 घंटे योग तक पहुंचें, तो कितने घंटे योग से शुरुआत करें ताकि वहां तक पहुंचें और कितने दिन में पहुंचें?
सब बातों पे बहुत ध्यान दें जो हमने चर्चा में लाई कि अब हमें पर चिंतन प्रदर्शन से मुक्त रहना है। दूसरों का चिंतन करने से हमें मिलेगा क्या? दूसरों को देखते देखते तो युग बीत गए, अब नहीं देखना है, अब अपने को देखना है। अन्यथा क्या होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो 20 साल से राजयोग करता है और देखा, अरे ये तो न सवेरे उठता, न भोजन पे योग करता है, सारा दिन बातों में तेरी मेरी में रहता है, ढीले हुए कि शायद ऐसे ही होगा, स्वीकार कर लिया। तो हमें केवल भगवान की आज्ञाओं को ही सुनना चाहिए, बाकी मनुष्यों को नहीं देखना चाहिए। कोई ढीला व्यक्ति है, कोई क्रोध बहुत करता है, हम सोचें इसका तो 30 साल में क्रोध ही नहीं छूटा, हमारी क्या गति होगी, ये सोचना बिल्कुल गलत है। जो एक व्यक्ति ने 30 साल में नहीं किया, वो एक व्यक्ति 30 दिन में कर सकता है, ये संभव है। इसलिए अपनी उमंगों को कभी भी दूसरों को देखकर खत्म नहीं करना होगा, पहली चीज। अब 2 घंटे से शुरू करेंगे और एक लक्ष्य बनाएं कि एक वीक में 2.25 घंटे योग कर देना है, अगले वीक में 2.5 घंटे कर देना है, फिर ऐसे ही 3 घंटे तक ले जाना है, एक एक वीक बढ़ा,
मतलब धीरे धीरे बढ़ा।
अभी एक वीक में 1 घंटा बढ़ गया, इस तरह से और भी कम, जैसे 4 घंटे हो गया, फिर और धीमी गति से बढ़ाएंगे कि हमें 15 मिनट बढ़ाना है 15 दिन में। और एक दृढ़ता की बहुत जरूरत है, जैसे मैंने किया था अपने जीवन में कि मान लो मेरा योग का चार्ट उतना नहीं हुआ जितना मैंने लक्ष्य रखा था, तो मैं रात को बैठता था योग में 2 घंटे बैठ के उस चार्ट को पूरा करना है, सवेरे जल्दी उठ के उस चार्ट को पूरा करना है। तो ये लगन भी एक ऐसी चीज है जो हमारी उमंगों को बहुत बढ़ाए रखती है और योग का चार्ट सहज बढ़ जाता है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन सेवाओं में हम तत्पर हैं उन सेवाओं को हम भली भांति पूर्ण किया करें, ताकि सबकी दुआएं भी हमारे साथ हों और परमात्म दुआएं भी हमारे साथ हों। क्योंकि मैं ये अनुभवों से कह सकता हूँ कि सर्व की दुआओं के बिना और परमात्म दुआओं के बिना हम योगी नहीं बन सकते। इस तरह 1 साल का प्रोग्राम बनाया जाए, धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाए और जहां तक वो पहुंच जाए वहां से वापिस न हो। मान लो वापिस होने लगा तो फिर अच्छा ध्यान देकर 2-4 दिन में उसको वहीं तक ले जाएं।
मान लो मेरा योग पूरा नहीं हुआ जितना मैंने लक्ष्य रखा था, अब रात को जाग के कर लिया जाए। लेकिन एक बात आपने ये भी कही थी कि हर एक की ब्रेन की कैपेसिटी अलग अलग है। अब मान लीजिए मेरा ब्रेन बिल्कुल थक गया है, योग हो ही नहीं रहा है और मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया हूं, क्या ऐसे में रात को जाग के वो करने से सहज होगा, ठीक होगा, या फिर कुछ और किया जाए?
नहीं, ऐसे में उसको रात को नहीं जागना चाहिए, उसे आराम करना चाहिए और सवेरे 4 बजे ही उठकर फिर से 4 से 8 का जो 4 घंटे का समय है इसको अच्छे अभ्यास में बिताना चाहिए, क्योंकि थका हुआ ब्रेन कभी योग युक्त नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी थकान हो जाए योग से नहीं, या तो बिल्कुल बॉडी लेस होकर अपने को रिलैक्स करना चाहिए, जिसको लोग शवासन भी कह देते हैं, पर है वो बॉडी लेसनेस, या फिर बिल्कुल सोकर जितना आपको नींद चाहिए उतना पूर्ण करें।
कई बार भ्राता जी योग करते हुए, मेडिटेशन करते हुए लोगों का ये भी अनुभव होता है कि मन बिल्कुल डेड हो जाता है, कुछ विचार करने की इच्छा नहीं होती है, तो वो कौन सी स्थिति है, उसमें क्या करना चाहिए, उसमें कुछ प्राप्ति हो भी रही है या नहीं हो रही है, वो भी समझ में नहीं आता।
मन का डेड होना बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, नील हो जाता है कईयों का, होता है, हमारे पास भी होता है। शुरू में मुझे भी 2-4 बार हुआ तो शिव बाबा ने ये स्पष्ट कर दिया कि इससे कोई प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें अच्छे संकल्प क्रिएट करने हैं। यदि तुम बहुत डीपली बॉडीलेस भी हो गए हो तो मन में ये संकल्प तो रहेगा ही, मैं आत्मा हूँ, मैं पीसफुल हूँ या प्योर हूँ। यदि तुम्हें बहुत डीप साइलेंस की भी स्थिति आ गई है तो बिल्कुल अपने स्वरूप की अवेयरनेस तो रहेगी ही। यदि हम अवेयरनेस के बिना नील स्थिति में पहुंचते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं। ऐसे साधक को स्वमान के बहुत अच्छे अभ्यास करने चाहिए और तत्काल कुछ ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन कर लेना चाहिए, ताकि ये स्थिति लंबा काल न चले, क्योंकि ये ब्रेन की कई शक्तियों को डैमेज कर सकती है।
बिल्कुल, और कईयों का मन, भ्राता जी जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल नील है, और कईयों का मन ऐसा होता है कि उचाट सा हो जाता है, जब ये आध्यात्मिक बातें करना या आध्यात्मिक अभ्यास करना इन सब में मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ या मोनोटोनस हो रहा है, तो ऐसे में करते रहना चाहिए या कुछ और कर लेना चाहिए?
नहीं, देखिए जब मन उचाट हो जाए, लोनली फीलिंग में आ जाए, ये हल्के डिप्रेशन की स्थिति होती है, तब तो मनुष्य को योग आदि बहुत सूखा लगेगा, उसमें उसको आनंद नहीं आएगा, तब उसको कर्म में लगना चाहिए और कर्म करते हुए 1-2 अभ्यास करने चाहिए, जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, वहाँ मेरा भाग्य इतना सुंदर है, कुछ ईश्वरीय महावाक्यों को स्मृति में लाना चाहिए, या बाबा मेरे साथ है, वो मेरे साथ रहकर मेरे कर्मों में मुझे कोऑपरेट कर रहा है, ऐसी गुड फीलिंग रखते हुए 2-4-5 दिन ऐसे सहज अभ्यास करने चाहिए। क्योंकि इस मन की जो उचाट स्थिति है इससे स्वयं को बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है, इससे नहीं तो मनुष्य का उमंग उत्साह भी नष्ट होता है, वो कुछ अच्छी प्लानिंग भी नहीं कर सकता। योग का फील्ड तो छोड़ो, कर्म क्षेत्र पर भी उसको बड़ी उदासीनता रहेगी। इसलिए इससे 2-4 दिन ऐसे अच्छे अभ्यास करके अपने को बाहर निकालना चाहिए।
बिल्कुल, मतलब स्थिति ऐसी नहीं रहने देना चाहिए। हाँ। क्योंकि कई लोग ऐसा लगता रहता है जी इसको एंजॉय करने लगते हैं,
इसे लोनली फीलिंग बढ़ जाएगी और फिर उसका ज्ञान योग सब छूट सकता
है। तो भ्राता जी, वो जो बात आपने कही थी कि हमें सबकी दुआएं मिले या प्रभु की दुआ मिले उसके बाद ही ये पॉसिबल है, तो ये कैसे समझें? मतलब एक होता है कि मैं अपने एफर्ट से वहां तक पहुंचूं और दूसरा हुआ कि परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा हो गई, आशीर्वाद हो गई, कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है? मुझे तो लगता है कि भगवान ही सिर पे हाथ रख दे कि लो बच्चे 8 घंटे हो जाए, तो ऐसा कैसे सहज हो
सकता है? वो तो हाथ रख देता है, लेकिन हाथ रखने से हम योगी तो अच्छे बन सकते हैं, पर यदि सदाकाल के योगी हमें बनना है तो हमें अपनी साधनाएं स्वयं ही करनी पड़ेंगी। क्योंकि किसी के भी आशीर्वाद से किया गया कोई भी चीज प्राप्त वो सदा नहीं चलती, चाहे वो परमात्मा आशीर्वाद ही क्यों ना हो। इसलिए मनुष्य को स्वयं अपनी मेहनत से सब कुछ अचीव करना चाहिए, वो एवरलास्टिंग रहेगा, वो अविनाशी रहेगा और उसकी सच्ची ताकत मनुष्य को प्राप्त होगी जीवन में।
जी, पता जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो बात मैंने कही थी कि लोगों ने इसलिए छोड़ दिया है कि शायद ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके मेल हमारे पास आते हैं जो विद्यालय से भी जुड़े हुए हैं कि भाई सुबह 7 बजे जा रहे हैं काम पे, रात को 9 बजे आ रहे हैं, तो अब उन्हें लगता है कि इस शेड्यूल में आए थके हारे अब वहाँ योग भी नहीं लगता, दिन भर भी वहाँ बिजी हैं, या महिलाएं भी घर के कामों में इतनी ज्यादा व्यस्त हो जाती हैं, तो शायद इसलिए उन्होंने छोड़ दिया है कि हमसे शायद नहीं होगा। एक सुंदर सी प्लानिंग जैसे आपने 2 घंटे की ही कही है सुबह से लेकर रात तक, क्या ऐसा खाका खींचा जा सकता है?
नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति बिल्कुल योग ना करें
जी।
जो 7 बजे सवेरे ड्यूटी पे जाते हैं और रात को 9 बजे आते हैं,
और ऐसे हैं,
ऐसे बहुत लोग हैं हमारे आईटी वाले, या दिल्ली में हम देखते हैं गुड़गांव में घर है, दिल्ली के दूसरे कोने पे जा रहे हैं, या नोएडा में नौकरी करने जा रहे हैं, या दिल्ली के उस कोने पे घर है फिर गुड़गांव में नौकरी करने जा रहे हैं, बड़े शहरों में 2-2 घंटे उनके बसों में गुजरते हैं। प्रायः जो लोग 7 बजे घर से निकलते हैं उसका कारण यही है कि 2 घंटे उन्हें बस यात्रा करनी पड़ती है, 7 बजे से हमको पूरा करते हैं फिर 2 घंटे बस यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे लोगों को मैं ये सिखाया करता हूँ कि 4 घंटे तुम्हारे पास फ्री हैं
जो बस यात्रा हाँ, कर रहे हैं।
सवेरे जब तुम घर से निकले तो इस 2 घंटे की एक प्लानिंग कर लो
जी,
कि मैं इन 2 घंटे में ये अभ्यास करती हुई जाऊंगी जाऊंगा, ऐसा रीतिपन का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास, वाइब्रेशंस फैलाने का अभ्यास
जी।
कम से कम ये 3 अभ्यास बहुत सहज हो सकते हैं, ऐसा रीतिपन, स्वमान मैं कौन हूँ और वाइब्रेशन मुझसे फैलते जा रहे हैं। कभी अभ्यास कर ले, हम बस में बैठे हैं ऊपर से शिव बाबा की किरणें पड़ रही हैं, एंजॉय करें, थोड़ी बहुत नींद भी आ जाती है लोगों को कि सवेरे कटे, आने दो एंजॉय करें, परमात्मा किरणों के नीचे बैठे हैं, शाम को चले, अब शाम को मन थक जाएगा, तो एकदम अपने को कुछ अच्छे विचारों से फ्रेश करें, जैसे हे शिव बाबा तुमने मुझे कितना अच्छा पाठ दिया है, हो हम तो धन्य धन्य हो गए तुम्हें पाकर, बस आज का हमारा ये खेल ड्रामा पूरा हुआ, अब हम फिर से तुम्हारे पास हैं। ऐसे अच्छे चिंतन से 5-7 मिनट में अपने को फ्रेश कर लेना चाहिए, क्योंकि सारे दिन के कामकाज का इफेक्ट इधर अवश्य होगा, कोई थक भी गए होंगे, किसी को अपने साथियों से निगेटिविटी मिली होंगी, किसी को अपने बॉस से डांट डपट भी मिल गई होगी, उसको वहीं छोड़ के आए, जैसे ऑफिस का दरवाजा बंद कर रहे हैं, जैसे ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं, उन सबको वहीं छोड़ दें, अब बस पूरा हुआ हमारा खेल और फिर वो 2 घंटे को एंजॉय करें, ये ध्यान रखना है। और फिर सारा दिन का जो समय है
जी,
जो जहां भी कार्यरत है, मान लो वो 9 से और शाम को 7 बजे तक, ये भी 10 घंटे हो गए, 10 घंटों में वो अपने ऑफिस में कार्यरत हैं। अब इस 10 घंटे की भी एक प्लानिंग करें कि हर घंटे के बाद, 1 घंटे मनुष्य थकता भी है मानसिक रूप से भी, तो वो 1 मिनट शरीरीपन योग अभ्यास स्वमान का अभ्यास करेंगे, इससे उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनको एक ताकत का इंजेक्शन लगा दिया गया हो, मन भी फ्रेश होगा, तन भी फ्रेश होगा, थकान भी मिटेगी, कोई निगेटिविटी हो उसको हटा दें इस घंटे में, तो हर घंटे में 1 मिनट करने से भले ही 10 ही मिनट होगा लेकिन इट विल बिकम ए मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस, इससे पिछला इफेक्ट खत्म होगा, नई एनर्जी आएगी और इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं फिर वो थोड़े थोड़े अपनी कॉन्शियसनेस में, तो इस तरह अगर सारा दिन बिताया जाए तो 4 घंटे योग तो आराम से।
बिल्कुल नहीं, शायद इस बात का ध्यान ही नहीं रहता लोगों को कि जिस समय पे हम जा रहे हैं आ रहे हैं उसको भी शायद यूज किया जा सकता है। और शायद उस समय वो कान में लगा के कुछ गीत भी सुनते रहते हैं, कुछ पढ़ते रहते हैं, तो क्या कुछ ऐसी कुछ कमेंट्रीज या कुछ ऐसे राजयोग के कुछ गीत या कुछ ऐसी किताबें हैं भ्राता जी जो ऐसे समय पे वो योग के लिए यूज कर सकते हैं?
बिल्कुल, अभी वो अपनी यात्रा में पढ़ेंगे तो नहीं, पर सुनने के लिए बहुत चीजें हैं। अपने मोबाइल फोन में बहुत कुछ आ जाता है, तो अच्छी क्लासेज, अच्छी कमेंट्री, अच्छी स्वमान की बातें, वो सब अपने पास रखनी चाहिए और यात्रा में कम से कम आधा घंटा उनको सुन लें, विशेषकर जब वापिस आ रहे हैं और जब जा रहे हैं शुरू में और वहाँ की भी शुरुआत में, तो जो इफेक्ट होता है ना और चीजों का, वो समाप्त होके हम एनर्जेटिक हो जाएंगे। इसकी मदद तो सबको लेनी ही चाहिए।
बिल्कुल, जो बनी बनाई चीजें हैं। तथा जी, एक मूल बात पे आना चाहूंगा जो मेरे मन में हमेशा उठता रहता है। एक ऐसा दौर था आपके जीवन में शुरुआत में जबकि आप निरंतर जैसे परमात्मा से जुड़े रहा करते थे, निरंतर योग युक्त रहा करते थे, तो आपने जब योगाभ्यास की शुरुआत की तो आप 8 घंटे तक पहुंचने के लिए या योग को निरंतर करने के लिए आपने क्या अपनाया था, दिनचर्या कैसी रखी थी, धारणाएं क्या रखी थी?
देखिए, मेरे साथ तो दो चीज हुई थी उस टाइम, ये बात 69 शायद अप्रैल की है
जी।
तो एक शिव बाबा की मुझे ब्लेसिंग मिल गई, कुछ ऐसी घटना हुई थी, हम लोगों ने म्यूजियम तैयार किया था आबू का, मैं भी वहाँ सेवा में था, तो उसकी ओपनिंग पे बाबा आए और उनसे मुझे कुछ मिल गया था, और बाबा ने मिलते हुए मुझे ही मिलते हुए खास, क्योंकि तब तो हम लोग पर्सनल मिल लिया करते थे ना, तो ये कहा था कि प्रतिज्ञा करके पुरुषार्थ करो। तो मैंने बस अगले ही दिन से जो प्रतिज्ञा की, बस वो जैसे परमात्म आदेश और आदेश के साथ उसकी शक्तियाँ और वरदान भी मिल गए, और 3 दिन में ही मुझे तो इसमें लक्ष्य में सफलता मिल गई थी और मैंने बहुत एंजॉय किया था। और फिर जैसा मैंने कहा, मैंने लक्ष्य बनाया था कि अब इसको कम नहीं होने देना है, तो उसका आधार यही था कि मेरी प्योरिटी बहुत अच्छी थी, मैं अंतर्मुखी बहुत रहता था, मेरा जीवन सरल चित्त भी था, तो इन सब चीज़ों की बहुत मदद मिल गई और दृढ़तापूर्वक मैंने किया था। लेकिन हर व्यक्ति इसको ऐसे नहीं कर सकता है, लेकिन एक लक्ष्य रखेंगे बहुत जल्दी, जिनके पास ये 2-3 चीज़ें हैं ना, ईगोलेसनेस, सरलता, अच्छी प्योरिटी और दुनिया से नो इंटरेस्ट, वो इस चीज को जल्दी अचीव कर सकते हैं।
आप, मैंने सुना था कि आप चार्ट भी लिखा करते
थे। हाँ, मैंने बहुत चार्ट लिखे जीवन में, आवरली चार्ट बहुत लिखे थे। चार्ट लिखने के तो मुझे जैसे शौक ही था बहुत ज्यादा, तो मैं आवरली चार्ट, 3-3 दिन के चार्ट, 40-40 दिन की प्लानिंग, कभी 15-15 दिन की प्लानिंग, मौन, ये सब उन दिनों, क्योंकि बहुत लगन थी अपने को संपूर्ण बनाने की, तो ये सब मैंने बहुत किया। और ये 1-2 दिन नहीं, सालों साल किया, बहुत साल तक किया, इसका फायदा बहुत।
शुक्रिया भ्राता जी, ये सारी चीजें भी हमारे दर्शक जो हमारे साधक बंधु हैं वो भी यूज करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका भी योग वहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आप हमारे सामने एक जीवंत उदाहरण है जिन्होंने इसे साकार करके दिखाया है। आज की सुंदर चर्चा के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कहते हैं जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है, और एक बार धुन लगा दें, एक बार लगन लग जाए, तो फिर कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है, बल्कि सहज से सहज होता चला जाता है। और साथ ही अभ्यास की भी जरूरत है। मुझे याद आ रही है एक प्रासंगिक बात कि एक बार पांडव जब बिल्कुल वनवास में चले गए थे, तो रात का समय था, बिल्कुल अंधेरा था, तो किचन से खटपट की आवाज आई, तो अर्जुन की आँख खुली, तो वो गए किचन में, देखा कि बहुत घनघोर अंधेरा है, उन्होंने दीपक जलाया तो देखा कि भीम जो महोदय हैं वो कुछ खा रहे हैं। इतना अंधेरा था कि कुछ भी सूझ नहीं रहा था। जब अर्जुन ने ये देखा कि भैया यहाँ बैठ के कुछ खा रहे हैं, तो अर्जुन ने पूछा कि भैया इतने अंधेरे में आपको दिखाई कैसे दे रहा है? तो भीम जी ने एक ही शब्द कहा, अर्जुन, अभ्यास। तो इस चीज का चूंकि अभ्यास था, इसलिए अंधेरे में भी उन्हें सब कुछ सहज प्रतीत हो रहा था, जबकि अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे भी ऐसा लगता है कि योग एक ऐसा विषय है जो अभ्यास का विषय है। लगन तो हमें कूट कूट भरी ही हुई हो, लेकिन साथ साथ हम अभ्यास जैसे जैसे करते चले जाते हैं, तो वैसे वैसे ये जो योग है सहज होता जाता है। जैसे कोई ड्राइवर होता है, जब हमने साइकिल चलाना शुरू किया था हमें कितना कठिन लगता था, लेकिन जब हमने चलाना सीख लिया तब हम हाथ छोड़ के भी चला सकते हैं। तो अभ्यास नितांत आवश्यक है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे, मुझे लगता है 8 घंटे योग करना हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। तो आपका योग सहज हो, सरल हो, और साथ ही इसकी गहन अनुभूति की ओर आप आगे बढ़ें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।